ज्योतिर्विज्ञान अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, चतुर्थ सेमेस्टर, विषय मुहूर्त शास्त्र। मुहूर्त शास्त्र के अंतर्गत नक्षत्र मेलापक या अष्टकुट विचार। भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से ही जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र के आधार पर दो पृथक व्यक्ति के अंतरंग गुण धर्म, प्रकृति, प्रवृत्ति एवं आंतरिक परिवर्तन के लक्षणों को सम्यक रूप से जानने के लिए प्रयास होता रहा है। फलतः चंद्र नक्षत्र के आधार पर वर वधु का गुण मिलापक किया जाता रहा है। जब एक पुरुष का विवाह किसी कन्या से होता है तो विवाह के बाद पति पत्नी दोनों के शरीर में, सक्रियता में, रक्त में, वजन में, प्रवृत्ति में, भोजन की अभिरुचि में, यहाँ तक कि निद्रा एवं स्वप्न आदि की स्थिति में भी व्यापक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। परिवर्तन की स्थिति स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों होती है। अतः इस परिवर्तन के लिए ऋषियों ने मेलापक को आधार बनाकर अतीन्द्रिय ज्ञान के अधिष्ठान पर एक प्रक्रिया को खड़ा किया। भारतवर्ष में प्रत्येक कोने में वैवाहिक सफलता के लिए व्यापक आधार वाले मेलापक चक्र की प्रक्रिया का प्रयोग होता है। आखिर कोई एक ऐसा आधार तो होना चाहिए जिस पर समाज विश्वास करके भविष्य में कदम रखने की तैयारी कर सके कि उसका दाम्पत्य भविष्य की ज्वाला में झुलसे नहीं, प्रवृत्तियों की टकराहट की कड़वाहट उसे मायूस न कर सके और यह आधार ज्योतिष शास्त्र का महनी अन्वेषण नक्षत्र मेलापक है। इसे गणना विचार, गुण मेलापक, गणना, गुण बोध, ज्योतक जोड़ना आदि नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की यह अद्भुत व्यवस्था भारतवर्ष को एक सशक्त माध्यम देती है। नक्षत्र मेलापक में वर वधु के जन्म नक्षत्र का ज्ञान अति आवश्यक होता है। जन्म नक्षत्र के आधार पर चंद्रमा और राशि का ज्ञान होता है। जन्म समय के आधार पर लग्न ज्ञात होता है। अतः लग्न और चंद्र मेलापक यही दो प्रबल आधार है। यहाँ पर श्री राम देवज्ञ आचार्य जिन्होंने मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में वर्णन किया है, वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गणमेत्रम भकुटम च नाड़ी चेते गुणाधिका, अर्थात वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमेत्री, गणमेत्री, भकुट, नाड़ी, ये आठ कूट वर वधु के मेलापक में देखे जाते हैं। इनमें उत्तरोत्तर गुण में एक से एक गुण अधिक होते जाते हैं। जैसे वर्ण में एक गुण, वश्य में दो गुण, तारा में तीन गुण, योनि में चार गुण, ग्रहमेत्री में पांच गुण, गण में छह गुण, भकुट में सात गुण तथा नाड़ी में आठ गुण होते हैं। सभी गुणों का योग 36 होता है। सबसे प्रथम यहाँ पर वर्ण विचार। अष्टकूट में सर्वप्रथम गुण जो आता है वह है वर्ण। अष्टकूट में वर्ण विचार के माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार समाज में प्रचलित वर्णों की भांति राशियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण होते हैं। उच्च वर्ण में ऊंचे होने का भाव रहता है। जैसे क्षत्रिय वर्ण के मनुष्य पर यदि शूद्र वर्ण का मनुष्य प्रभाव दिखाना चाहे तो वह क्षत्रिय वर्ण का पुरुष शूद्र वर्ण के पुरुष का दमन कर देगा। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण की कन्या हो और शूद्र वर्ण का वर हो तो वह कन्या उच्च वर्ण की होने के कारण शूद्र वर्ण के वर को सदैव दबाती रहेगी। इस प्रकार स्त्री और पुरुष का जीवन गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो सकता। इसी समस्या से बचने के लिए वर्ण का विचार किया जाता है। वर्णकूट का संबंध राशियों से है, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ब्राह्मण राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु क्षत्रिय वर्ण हैं, वृषभ, कन्या, मकर ये राशियां वैश्य वर्ण हैं, मिथुन, तुला और कुंभ इन राशियों का शूद्र वर्ण है। स्त्रियों का वर्ण उत्तम और वर का वर्ण हीन हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। यदि विवाह करते हैं तो स्वामी की हानि होती है। वर कन्या की राशि के वर्ण से देखना चाहिए। यदि दोनों के वर्ण समान अथवा वर का वर्ण श्रेष्ठ है तो अति उत्तम, अन्यथा शुभ नहीं होता। स्त्री और पुरुष का एक वर्ण हो तो यहाँ गुण की प्राप्ति होगी एक, पुरुष श्रेष्ठ वर्ण का हो तो गुण एक, इसके विपरीत वर्ण हो तो गुण शून्य होते हैं। यह हमने पहला अष्टकूट में से पहला वर्ण वर्ण गुण का यहाँ पर आपको बताया, जिसकी गुणों की संख्या है एक। अब द्वितीय वश्य वश्य विचार, यहाँ पर वर और कन्या कौन किसके अधीन है, कौन किसके वश्य अर्थात वश में करने योग्य है, यह विचार इसके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर मेष और धनु राशि का उत्तरार्ध, मकर का पूर्वार्ध, वृषभ और सिंह राशि यह चतुर्पद चतुष्पद राशियाँ हैं, वृश्चिक राशि सर्प है, कर्क राशि कीट है, धनु का पूर्वार्ध, मिथुन, कन्या और तुला ये द्विपद हैं। उसी प्रकार कुंभ, मीन और मकर का उत्तरार्ध ये जलचर हैं। यहाँ चतुष्पद, द्विपद, कीट, सर्प और जलचर राशियों के बारे में बताया गया है। आचार्य श्री राम देवज्ञ ने मुहूर्त चिंतामणि में इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि सिंह राशि को छोड़कर सभी राशियां मनुष्य राशि के वश्य होती है और जलचर राशि भस्य होती है तथा वृश्चिक को छोड़कर सभी राशियां सिंह के वश्य हैं तथा अन्य परस्पर वश्यावश्य मनुष्य के व्यवहार से जानना चाहिए। जैसे वर कन्या दोनों की मनुष्य राशि अथवा जलचर राशि हो तो शुभ होगी, एक की मनुष्य राशि और दूसरे की जलचर हो तो बेर, उसी प्रकार एक की सिंह राशि और दूसरे की मनुष्य राशि तो भी बेर होता है। यह विवाह में विशेष विचारणीय है। वश्य कूट को दो अंक या दो गुण प्राप्त होते हैं। शत्रु भक्षक हो तो गुण जीरो हो जाते हैं, दोनों की समान जाति हो तो गुण दो प्राप्त होते हैं और वश्य शत्रु हो तो गुण जीरो मिलते हैं। इस प्रकार वश्य का विचार गुण मिलान में किया जाता है। तृतीय है तारा विचार। तारा विचार यहाँ पर श्री राम देवज्ञ बोल रहे हैं, कन्याश्रादवर्भम यावत् कन्याभम वर भादपि गण्येन्न वच्छेषे त्रिश्वद्रिभम सत् स्मृतम्। अर्थात कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक और वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र तक पृथक पृथक गणना करनी है। जितनी संख्या हो उसमें अलग अलग 9 से भाग देने पर यदि 3, 5 और 7
शेष बचते हैं तो तारा शुभ नहीं होती है। शेष 1, 2, 4, 6, 8, 9 ताराएं शुभ होती हैं। शुभ होने पर 3 गुण की प्राप्ति होती है। वर और कन्या दोनों से शुभ तारा हो तो श्रेष्ठ होता है, एक से शुभ हो तो मध्यम होता है और दोनों से अशुभ हो तो निंदित माना जाता है। जैसे वर कन्या दोनों की तारा शुभ अशुभ हो तो उसका गुण आधा हो जाता है, अर्थात 1.5 गुण प्राप्त होता है। दोनों की तारा शुभ हो तो 3 गुण प्राप्त होता है और दोनों वर कन्या की तारा अशुभ हो तो गुण 0 मिलता है। इस प्रकार तारा गुण का विचार किया जाता है। चतुर्थ योनि विचार। अश्विनी और शतभिषा की अश्व योनि होती है। स्वाति और हस्त नक्षत्र की कासर भैसा योनि होती है। धनिष्ठा एवं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की सिंह भरणी तथा रेवती की हाथी, पुष्य कृतिका की मेष भेड़ा, श्रवण एवं पूर्वाषाढ़ा की वानर, उत्तराषाढ़ा एवं अभिजीत की नकुल नेवला, योनि रोहिणी एवं मृगशिरा की सर्प, ज्येष्ठा एवं अनुराधा की मृग, मूल एवं आद्रा की श्वान कुत्ता, पुनर्वसु अश्लेषा की मार्जार योनि, मघा तथा पूर्वा फाल्गुनी की मूषक योनि, विशाखा चित्रा की व्याघ्र योनि और उत्तरा फाल्गुनी व उत्तरा भाद्रपद की गौ योनि होती है। इन योनि में महावेर वेर योनि का विचार करके वर कन्या के विवाह का निश्चय करना शुभ होता है। दो दो योनियों में परस्पर महावेर होता है, जैसे घोड़ा भैसा, सिंह हाथी, मेष वानर, नकुल सांप, मृग कुत्ता, मार्जार मूषक, व्याघ्र और गौ आपस में महावेर होता है। योनि मैत्री होने में 4 गुण की प्राप्ति होती है। यदि स्त्री पुरुष दोनों का महावेर हो तो गुण 0 हो जाते हैं। दोनों की आपस में शत्रुता हो तो गुण 1, दोनों का स्वभाव 1 हो तो गुण 2, दोनों सामान्य मित्र हैं तो गुण 3, दोनों की अधिक मित्रता हो तो गुण 4, दोनों की जाति 1 हो तो गुण 4 प्राप्त होते हैं। 5वां ग्रह मैत्री विचार। ग्रह मैत्री में सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि के आपस में परस्पर संबंधों की चर्चा की गई है। जैसे कि सूर्य के चंद्र मंगल और गुरु मित्र हैं, बुध सम हैं, शुक्र और शनि शत्रु हैं। चंद्रमा के सूर्य बुध मित्र हैं, मंगल गुरु शुक्र शनि सम हैं और कोई शत्रु नहीं है। मंगल के सूर्य चंद्रमा और गुरु मित्र हैं, शुक्र शनि सम हैं और बुध शत्रु है। बुध ग्रह के सूर्य शुक्र मित्र हैं, मंगल गुरु शनि सम हैं और चंद्रमा शत्रु है। गुरु के सूर्य चंद्र मंगल मित्र हैं, शनि सम हैं और बुध शुक्र शत्रु हैं। शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, मंगल गुरु सम है और सूर्य चंद्र शत्रु हैं। शनि ग्रह के बुध और शुक्र मित्र हैं, गुरु सम है और सूर्य चंद्र मंगल शत्रु है। इस प्रकार यहाँ इनकी मित्रता शत्रुता और समता का व्यवहार ज्ञात किया जाता है। अर्थात यदि वर और कन्या दोनों की राशियों के स्वामी अन्योन्य मित्र हो तो शुभ माने जाते हैं। एक का राशि स्वामी सम और दूसरे का मित्र हो तो मध्यम होता है। दोनों के राशि स्वामी सम हो तो उदासीन, दोनों का राशि स्वामी शत्रु हो तो एक की मृत्यु होती है। एक का राशि स्वामी शत्रु और दूसरे का मित्र हो तो कलह, तथा एक का राशि स्वामी शत्रु और दूसरे का समूह तो वियोग कराता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्य है। यहाँ पर गुण प्राप्ति के नियम बता रही हूँ। वर कन्या के राशि मित्र तथा एकाधिपत्य के हो तो मैत्री गुण 5 होते हैं, सम मित्र में 4 गुण, सम सम में 3 गुण, मित्र शत्रु में 2 गुण, सम शत्रु में 1 गुण और शत्रु शत्रु में 0 या कहीं कहीं आधा गुण की प्राप्ति होती है। षष्ठ है गण विचार। श्री राम देवज्ञ के अनुसार रक्षो नराम अमर गणा क्रमतो मघा ही वस्विंद्र मूल वरुणा नल तक्ष राधा पूर्वात्तरात्रय विद्धात्र यमेश भानी मैत्रादिति इंदु हरि पोष मरुल्लघूमि। अर्थात मघा, आश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, कृतिका, चित्रा, विशाखा, ये नक्षत्र राक्षस गण के हैं। तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी तथा आद्रा, ये 9 नक्षत्र मनुष्य गण के हैं। अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती मनुष्य वर्ण के हैं। और अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाति, अश्विनी, पुष्य, हस्त, ये 9 नक्षत्र देवगण के माने जाते हैं। इनके फल इस प्रकार हैं, जैसे वर कन्या का एक ही गण हो तो अत्यंत प्रीति होती है, देव और मनुष्य का मध्यम प्रीति, राक्षस और मनुष्य का मृत्यु, देव और राक्षस का हो तो कलह होता है। मनुष्य राक्षस में विशेष यह है कि वर राक्षस कन्या मनुष्य गण हो तो वैर होता है और यदि वर मनुष्य कन्या राक्षस गण हो तो वर की मृत्यु। यह बहुत प्रमाणों से पुष्ट है। इस कूट में गण साम्य में 6 गुण, पुरुष देव स्त्री मनुष्य गण में 6 गुण, पुरुष मनुष्य स्त्री देव गण में 5, पुरुष राक्षस स्त्री देवता में 1 गुण, अन्यथा गण का गुण 0 होता है। सातवा है भकुट विचार। भकुट अत्यंत गुण मिलान में हमारे अष्टकुट विचार में नक्षत्र मेलापक में भकुट विचार का अत्यंत महत्व है, इसलिए इसे 7 अंक दिए गए हैं। यहाँ विषम राशि से 6 राशि तथा सम से 8 वही होती है। यह शत्रु षडाष्टक है, इनके स्वामी शत्रु होते हैं तथा सम राशि से 6, विषम से 8 मित्र षटकाष्टक है, इनके स्वामी मित्र होते हैं। यह शुभ होता है, इससे विपरीत अशुभ होता है। शत्रु षटकाष्टक मृत्यु करता है। यदि वर कन्या की 5-9 एक से दूसरी 9वीं 5वीं राशि हो तो संतान हानि तथा दूसरी 12वीं हो तो निर्धनता होती है। अन्य राशियों में परस्पर संबंध शुभ होते हैं। स्त्री पुरुष की 1 राशि हो, नक्षत्र अलग हो अथवा 1 हो और चरण अलग हो तो उसका गुण 7 और दोनों की राशियां सम सप्त हो तो 7 गुण, 3-11 हो तो 7 गुण, 4-10 हो तो 7 गुण, अलग राशि और 1 नक्षत्र हो तो 5 गुण, प्रीति षडष्टक, द्वीर्द्वादश, नवम पंचम इसमें परस्पर योनि शत्रुता हो तो भकुट के गुण 6, दोनों का नक्षत्र 1 और नक्षत्र चरण भी 1 हो तो उसका गुण 0 समझना चाहिए। दुष्ट भकुट के विषय में कुछ परिहार हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। दुष्ट भकुट में यदि वर कन्या के राशि स्वामी 1 ही हो, जैसे मकर और कुंभ दोनों की राशि का स्वामी शनि होता है, मेष और वृश्चिक दोनों राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ और तुला दोनों राशियों का स्वामी 1 ही शुक्र होता है, और नाड़ी शुद्धि हो तो विवाह शुभ होता है। वर कन्या के राशि स्वामियों में परस्पर मित्रता हो, मेष सिंह, मीन सिंह, मेष धनु, कन्या तुला, वृषभ मिथुन, कर्क सिंह, मीन मेष, वृश्चिक धनु, यह राशियां हो और नाड़ी शुद्ध हो तो विवाह शुभ होता है। अन्यश में राशि स्वामियों की समता में भी दोनों के नवांश पतियों में मित्रता हो और अंश पति बनी हो, अर्थात अपने नवांश, उच्च राशि के नवांश या अपने मित्र के नवांश वर्गोत्तम में हो और नाड़ी शुद्ध हो तो विवाह शुभ माना गया है। यदि वर कन्या दोनों की ताराएं उत्तम हो और नाड़ी शुद्ध हो तो भी विवाह शुभ माना गया है। राशि वश्यता के रहते नाड़ी शुद्ध हो तो भी विवाह शुभ होता है। यहाँ श्री राम देवज्ञ के अनुसार दुष्ट भकुट नाशक योग भी विचार किया जाता है। तात्पर्य है कि वर कन्या दोनों के राशि स्वामियों की आपस में मित्रता हो अथवा दोनों के नवमांश स्वामियों में मित्रता हो तो गण का दोष नहीं होता तथा उत्तम भकुट हो तो ग्रह मैत्री जनित दोष नष्ट हो जाता है तथा ग्रह मैत्री उत्तम हो तो दुष्ट भकुट का दोष नष्ट हो जाता है। यह विशेष मेलापक में ध्यान रखने योग्य विषय है। आठवां है नाड़ी विचार। अंतिम आठवां अष्टकूट नाड़ी विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सभी गुण मिलान में सभी कूट में अष्टकूट का ही विचार होता है, उसमें नाड़ी को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया गया है। नाड़ी दोष यदि होता है तो विवाह श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। जैसे ज्येष्ठा, आद्रा, उत्तरा फाल्गुनी एवं शतभिषा, इनसे दो दो नक्षत्र, ज्येष्ठा मूल, आद्रा पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी हस्त, शतभिषा पूर्वा भाद्रपद और अश्विनी, इन नौ नक्षत्रों की आद्य नाड़ी होती है। पुष्य, मृक्षिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी तथा उत्तरा भाद्रपदा, इन नौ नक्षत्रों की मध्य नाड़ी होती है। स्वाति, कृतिका, आश्लेषा एवं उत्तराषाढ़ा से दो दो नक्षत्र, स्वाति विशाखा, कृतिका रोहिणी, आश्लेषा मघा, उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण और रेवती, ये नौ नक्षत्र अंत्य नाड़ी के हैं। वर वधु की एक नाड़ी चाहे आदि अथवा अंत्य हो तो अशुभ फल देती है और मध्य नाड़ी दोनों की हो तो मृत्युदायक होती है। स्त्री पुरुष की अलग नाड़ी हो तो उसका गुण आठ मिलता है और दोनों की एक ही नाड़ी हो तो नाड़ी का गुण शून्य हो जाता है। नाड़ी दोष परिहार के विषय में बताया गया है, वर वधु दोनों की राशि एक हो और नक्षत्र भिन्न भिन्न हो अथवा दोनों का नक्षत्र एक हो तथा राशि अलग अलग हो तो नाड़ी और गण का दोष नहीं होता है। एवं यदि नक्षत्र एक हो किंतु चरण अलग अलग हो तो भी नाड़ी और गण का दोष नहीं होता। नक्षत्र मेल उत्तम कहा जाता है। एक ही नक्षत्र, एक ही चरण हो तो विवाह उत्तम नहीं होता। यदि वर के नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र दूसरा हो तो अशुभ होता है। नाड़ी दोष के परिहार में श्री नारायण देवज्ञ के अनुसार क्षत्रिय आदि वर्णों के लिए पार्श्विक नाड़ी दोष कचित अनिवार्य है। बृहज्जात ज्योतिष सार में नाड़ी दोष के परिहार के विषय में उल्लेखनीय है, दोषापनुत्तये नाड़िया मृत्युंजयच्पादिकं विधाय ब्राह्मणानश्चैव तर्पयेत् काञ्चनादिना, अर्थात आवश्यकत्वेन यथाशक्ति यथाधिकार महामृत्युंजय जापादि को आचरित करके ब्राह्मणों को स्वर्ण, रत्न, गौ, अन्न, वस्त्र, घृत से संतुष्ट करने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। इस प्रकार यह अष्टकूट हमने आपको आज बताए, इन 8 कुटों के शुभ होने पर 36 गुण मिलते हैं। इसलिए मुनियों का आदेश है कि गुण योग मेलापक में 27 से ऊपर हो तो अतिश्रेष्ठ, 27 से कम 20 तक उत्तम, 20 से कम अर्ध, 36 से अर्ध 18 तक मध्यम, 18 से कम 16 तक ग्रहण करने योग, किंतु निकृष्ट कोटि का माना गया है। यदि ग्रह मेलापक उत्तम हो तो 16 से कम 12 तक भी गुण योग ग्राह्य कहा गया है। प्रत्येक कूट का, प्रत्येक गुण का अपना महत्व है, अतः किसी एक गुण को अधिक भार न देते हुए 50% अंक आने पर गुण मिलान ठीक मान लेते हैं। वैसे भी कुटों को अंक उनके महत्व के आधार पर ही दिए गए हैं। जैसे संतान फल अर्थात नाड़ी को सबसे अधिक 8 अंक दिए गए हैं, उसके बाद वर वधु में तालमेल और मित्र भाव को दर्शाने वाले भकुट एवं ग्रह मैत्री को 7 एवं 5 अंक दिए गए हैं, उसके उपरांत मानसिक तालमेल को 6, शारीरिक संबंध को 4, धन के कारक तारा को 3 एवं व्यवहारिकता को 2 और 1 अंक दिए गए हैं। इन सभी गुणों में नाड़ी को 8 गुण देने का मतलब यह है कि वरीता में इसको सबसे उच्च स्थान दिया गया है। नाड़ी का संबंध खून से होता है। अगर वर कन्या की नाड़ी 1 हो तो इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही श्रेणी के खून अपने अंदर रखते हैं और इसका पूरा प्रभाव संतान पर पड़ता है। अधिकतर यह देखने में भी आया है कि जिन वर वधु की पत्रिका में नाड़ी दोष होता है उन्हें संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। कभी कभी संतान पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती या होती ही नहीं है। गुण मिलान को यहाँ एक मेलापक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। उदाहरण के लिए वर का नक्षत्र पुनर्वसु चतुर्थ चरण में हुआ है और कन्या का पूर्वा फाल्गुनी प्रथम चरण में जन्म है। यहाँ राशि, वर की राशि कर्क है, कन्या की राशि सिंह है। वर का वर्ण विप्र है, कन्या का वर्ण क्षत्रिय है। वर्ण का वश्य जलचर कीट है, कन्या का चतुष्पद है। वर की तारा 5 है, कन्या की तारा 6 है। वर की योनि मार्जार है, कन्या की योनि मूषक है। वर की राशि के स्वामी चंद्रमा है, कन्या की राशि के स्वामी सूर्य है। वर के देवगण हैं, कन्या के मनुष्यगण हैं। वर का भकुट 2, कन्या का 12। वर की नाड़ी आदि, कन्या की मध्य। यहाँ हम विचार करेंगे तो हम यह देखेंगे कि कन्या के वर्ण से वर का वर्ण श्रेष्ठ है, इसलिए वर्ण गुण 1। वर के वश्य कन्या नहीं है, इसलिए वश्य गुण 0। तारा 1 से शुभ, 1 से अशुभ है, इसलिए तारा गुण 1.5। योनि में शत्रुता होने से योनि गुण 0। गण में मैत्री होने से गुण 0। ग्रह मैत्री होने से गुण 6। भकुट द्वितीयादश होने से गुण 0। नाड़ी भिन्न होने के कारण नाड़ी गुण 8। सभी गुणों का योग करने पर 21.5 गुण प्राप्त होते हैं, जो सर्व गुण योग 36 के आधे 18 से अधिक है। इसलिए इन दोनों वर कन्या में वैवाहिक संबंध शुभप्रद है। इस प्रकार हमने यहाँ अष्टकूट का आज जो विचार किया है, इससे नक्षत्रों और उनके चरण के माध्यम से गुण मिलान किया जाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए, विवाह के लिए केवल नक्षत्र मेलापक और ग्रह मेलापक की शुद्धि ही के अलावा भी हमें जन्म कुंडली में दोनों के नाम नक्षत्र से विचार करने चाहिए। उसमें गुण के साथ साथ पत्रिका में स्थित ग्रह दोष, साम्य तथा भाव मेलापक और दोनों की कुंडली में मंगल आदि दोषों का भी विचार करना आवश्यक होता है।
यह सब विचार कर ही एक सभी संतुलित और भाव मेलाप और ग्रह दोष के कारण सुखी तथा दीर्घ वैवाहिक जीवन देखे गए हैं। धन्यवाद।